بروجرس.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. آخر كلاس میں ہم نے کیا کیا تھا؟
اولاد اور بیویاں
اولاد اور بیویوں کے بارے میں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پڑھ رہے تھے. اور کوئی بتا رہا آپ؟ جی صحیح. تو آخری کلاس میں ہم نے ختم کس بات پر کی تھی؟ آخری کلاس ہم نے ختم کس بات پر کی تھی؟ آن لائن کوئنگ. آج کل آن لائن لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ نہیں ہو رہی. آپ بتا رہے تھے
تو ہم آج ان کا انتقال کے بارے میں بات کریں گے.
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بارے میں بات کرنے کے لیے، کر چکے تھے. نہیں، ان کے انتقال کے بارے میں بات ہو گئی تھی. اصل میں جہاں تک میرے ذہن میں ہے، سملیرٹیز ان دیئر گرینڈ چلڈرن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گرینڈ چلڈرن کے درمیان جو سملیرٹیز تھیں وہ ہم نے پڑھ لی تھی شروع میں، جب نسبت اتحادی کی بات کر رہے تھے. بہرحال، تو آخری کلاس میں میرے حساب سے ہم نے ابو بکر، جی اگزیکٹلی میرے حساب سے ہم نے پچھلی کلاس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کر کے مکمل کر دی تھی. اور اس کا اختتام کیسے کیا تھا؟ اختتام جو ہے وہ حضرت انجم نیازی دامت برکاتہم کے لکھے ہوئے اشعار پر کیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں. حضرت جی کی فرمائش کے اوپر لکھنا شروع کیا، اور اتنا لکھا کہ ہر ہر صحابی کے، تقریباً ہر ہر صحابی کا تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے صحابہ کے اوپر جو ہے وہ نظمیں لکھ دیں، پوری پوری کتابیں مرتب کر دیں، ٹھیک ہے. اتنے زبردست وہ ماشاء اللہ شاعر ہیں. تو پچھلی کلاس میں ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اشعار تھے تو ان کے اوپر کے ذکر کو مکمل کیا تھا. تو اب جو ہے وہ دل چاہ رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ دوسرے خلیفہ راشد، دوسرے عشرہ مبشرہ، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے وزیر، ٹھیک ہے، تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ہم اشعار سے ہی کریں، صحیح ہے، جو کہ انجم نیازی صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت جی دامت برکاتہم کے صاحبزادہ صاحب مولانا سیف اللہ احمد کی کتاب عشرہ مبشرہ میں سے. تو حضرت عمر رضان کے بارے میں انہوں نے یہ اشعار نقل فرمائے کہ غور سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کریں، اتنے مشکل اشعار نہیں ہیں. زمین مانگتے تھے، نظر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے، نہ مال دولت مانگتے تھے، زر، ٹھیک ہے. پیغمبر خدا سے عمر مانگتے تھے، زمین مانگتے تھے، نظر مانگتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے عمر مانگتے تھے، کیونکہ عمر رضان کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی تھی. پہاڑوں پہ بھی خوف طاری ہو جس کا، زمین پر وہ ایسا بشر مانگتے تھے جن سے پہاڑ بھی ڈر جائیں، ایسے بشر، ایسے انسان مانگتے تھے. کرے ساری دنیا پہ اپنا جو سایہ، وہ صحرا میں ایسا شجر مانگتے تھے، ریگستان کے اندر ایسا درخت جس کا کہ سایہ جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر ہو، ویسا وہ شجر یعنی درخت مانگا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جو دنیا میں سارے سروں پر ہو بھاری، وہ ایک ایسا آزاد سر مانگتے تھے. لیکن عمر رضوان کا سر ہو گیا کہ ان کی جو شان تھی وہ ہر ایک کے اوپر بھاری تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ان کی دعا مانگتے تھے. उमर के लिए ऐसा घर मांगते थे, जुदा हो न मंजिल। अच्छा, जो फिरदौस में हो सबसे खूबसूरत, जो फिरदौस यानी जन्नत में हो सबसे खूबसूरत, उमर के लिए ऐसा घर मांगते थे, जुदा हो न मंजिल से पहले जो ऐसा, वो अपने लिए ऐसा हम सफर मांगते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लिए ऐसा हम सफर यानी ऐसा साथी जो कि सफर में साथ हो, नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत में उनकी मदद करने वाला हो, जो कि सारी जिंदगी उनसे जुदा ना हो। उमर रज़ियल्लाहु आपको पता है कि जिंदगी में भी नबी अलैहिस्सलाम से जुदा नहीं हुए, हत्ता के मौत के बाद भी नबी अलैहिस्सलाम से जुदा नहीं हुए, और आप रज़ियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलाम के साथ ही उसी रोज़े मुबारक के अंदर आराम फरमा रहे हैं। आगे और शेर भी इन्होंने नकल किए हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं कि मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। ठीक है, यानी अल्लाह ताला के शायर तो फिर इस तरह के अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि कभी कभी जो है ना वो जरा अजीब से लगते हैं, अल्लाह को भेजना पड़ा, ये कोई क्या बात हो गई, लेकिन शेर व शायरी के अंदर इस तरह की चीजें जो है ना वो चलती हैं। तो मर्दे जलाल यानी जलाल वाला, जैसे उमर रतान के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि ऐसे वो साहिब, यानी गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता था और बहुत जो है वो डांटते भी थे, ये सब। ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, उनके उनका जो कद काठ था ना, उनकी कद कामत जो है वो ऊंची थी, लंबे थे उमर रतान। जब हजरतुल वदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ तवाफ करने के लिए आए ना, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अलग से बुला कर कहा, उमर ध्यान करना है, हजरे अस्वद के ऊपर पहुंचने के लिए ना धक्कम पेल ना करना, वो तुम तो रोन दोगे लोगों को, ठीक है, तो तुम खास ख्याल रखना, क्योंकि उनका बदन जो था ना वो इतना बड़ा था। आई सदाए कुफर किसी सिमत से अगर, आई सदाए कुफर किसी सिमत से अगर, किसी डायरेक्शन से अगर काफिरों ने आवाज लगाई ना, उस शख्स को अकेला उधर भेजना पड़ा, जाओ जाकर के निपटो इन काफिरों से, अकेले ही उनको भेजना पड़ा। बढ़ने लगा जो जोर जहालत की फौज का, रुए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा, नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए फौलाद से भी सख्त बशर हजरत उमर रज़ियल्लाहु को भेजना पड़ा। तो उमर रज़ियल्लाहु जो हैं ये अशरा मुबशरा साहबी हैं, यानी ये उन साहबों में से हैं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया में ही नाम लेकर के जन्नत की बशारत दी थी। ये कुरैश में से थे, मक्का मुकरमा के, ठीक है, रहने वालों में, और कुरैशी साहबी थे ये। इनका जो जो फैमिली ट्री है ना, जैसे कसासुन नबीन में आप नबी अलैहिस्सलाम का फैमिली ट्री पढ़े थे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुतलब बिन अब मनाफ बिन कुसई बिन कलाब वगैरह सारा, तो इस तरह से 9th जो ऊपर जनरेशन जाएगी ना, तो वहां पर उमर अजान और नबी अलैहिस्सलाम का शजरा ऊपर जाकर के ऐसे मिल जाता है, ठीक है ना, यानी 9th ग्रैंड फादर, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर दोनों के नबी अलैहिस्सलाम उमर अजान के एक ही थे, ठीक है। तो इस तरह से ये जरा दूर की फैमिली तो है, लेकिन है तो वही फैमिली, ठीक है। कुरैश जो था वो इतना बड़ा जो क्लैन था वहां पे रहने वालों का, तो इसी तरीके से क्लैन बनता है, कबीला बनता है, उसको उर्दू में कबीला और अंग्रेजी में क्लैन कहते हैं। तो उमर अतान का नवी जनरेशन में जाकर के नसब नबी अलैहिस्सलाम से मिल जाता है। मुसलमान कब हुए थे? 6th ईयर ऑफ नबुवत, यानी नबी अलैहिस्सलाम को जब नबुवत मिली थी गारे हिरा में, इकरा बिस्मे रब्बिके लज़ी खलक के, तो उसके 6 साल के बाद जो है वो उमर अज़ान मुसलमान हुए थे। और ये मैं चेक नहीं कर सका कंफर्म, लेकिन जहाँ याद पड़ता है 40वें मुसलमान थे, 40वें मुसलमान थे हजरत उमर अज़ान। 39th कौन थे? ये तो 40th आदमी थे जो कि मुसलमान हुए, मर्द हमजा
बिल्कुल
रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो 39th थे, ठीक है, और ये 40वें थे। तो उमर अजान जो है अल्लाह ताला ने उनको बड़ी जो है ना वो इम्प्रेसिव किस्म की पर्सनालिटी अता फरमाई थी, जैसे आप जो है हमारे मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुनते रहे हैं और हमारे अजी के बारे में भी, तो ऐसी ना बड़ी शान वाली पर्सनैलिटी, लंबे कद के थे, चौड़े बदन के ऐसे थे, और इनकी अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं निशांत?
के कितने साल बाद भेजे?
6 साल, 6th ईयर अपने को, ठीक है। तो अच्छा, एक तो ये कि इनकी फिजिकल पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, दूसरी बात इनके अंदर क्या थी कि ये पढ़े लिखे थे, इनको लिखना पढ़ना आता था, तो और इनको फिर ना बात भी बड़ी अच्छी करनी आती थी, ये इनके अंदर बड़ी एक खास बात थी। तो इस वजह से ना कुरैश इनको किसी दूसरे कौम के पास अगर कोई नेगोशिएशंस के लिए अपना एम्बेसडर बनाने बना करके भेजना होता था, तो वो इनको भेजते थे, कुरैश मक्का, ठीक है। तो ये एम्बेसडर के तौर पर भेजे जाते थे, तो इनकी बड़ी इज्जत थी, बड़ा वकार था इनका कुरैश के अंदर। अगरचे कि इनकी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, ये 20s में थे, 24 ईयर्स के थे जब ये मुसलमान हुए थे, और फिर 6, हाँ, तो यानी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन इनको फिर भी ना एम्बेसडर के तौर पे भेजा जाता था। अच्छा, तो जब ये मुसलमान हो गए तो फिर इनका शुमार जाहिर है फिर इल्म रखने वाले सहाबा में होने लगा, आलिम सहाबा में, क्योंकि पढ़े लिखे थे और तेजी से फिर उन्होंने इल्म हासिल करना शुरू कर दिया नबी अलैहिस्सलाम से। अच्छा, एक हदीस मुबारक भी नकल फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफा एक बाग में तशरीफ ले गए, ठीक है। बाग जो है वो लोगों के प्राइवेट बाग होते थे ना, तो उन्होंने अपने जो बागों के, जैसे भी मदीना मनोरमा आप देखें तो उन्होंने बकायदा दीवार बनाई हुई होती थी, और दीवार का एक दरवाजा होता था, उसके अंदर जो है वो बाग होते थे। यहाँ पर भी कभी कभी आपको बड़े बड़े जो विलाज नजर आते हैं प्रिंस वगैरह के, तो आप देखेंगे बाहर से नजर आ रहा होता है कि अंदर बहुत सारे खजूर के दरख्त लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने घर के अंदर ही जो है ना वो एक साइड पे बाग बनाया हुआ होता है खजूर का। तो इस तरह के एक बाग में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो उनके साथ जो थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ गालिबन हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े गर्मी का दिन था, उस बाग के अंदर एक कुआं था, तो कुएं के यानी जो वेल होता है ना कुआं, उसकी बाकायदा ऐसी दीवार सी बनी हुई होती है, जो इस तरह के अंदर हम जाते हैं तो वहां पर भी एक पुराने जमाने का एक कुआं उन्होंने कमरे के अंदर बनाया हुआ है, तो उसकी उसको मुंडेर कहते हैं कुएं की, ठीक है, जो उसके गिर्द दीवार होती है ना छोटी सी, उस मुंडेर के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम इस तरह से बैठ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टांगे जो हैं वो कुएं के अंदर लटकाई हुई थी, और कुएं के अंदर या तो पानी था या पानी के होने की वजह से ठंडी हवा कुएं के अंदर होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी टांगे अंदर लटका करके ना गोया के ठंडक फील कर रहे थे, ठीक है। अबू मूसा अशरी रहता है नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अबू मूसा जा करके ना बाग का दरवाजा बंद कर दो, और अगर कोई आने के लिए इजाजत मांगे तो पहले मुझसे पूछना और फिर उसके लिए दरवाजा खोलना। उन्होंने जाके दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद खटखट हुई, तो वो पूछा कि कौन, आगे से जवाब आया अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो नबी रसूल ने पूछा, नबी रसूल ने फरमाया अबू मूसा उनको अंदर आने दो और उनको जन्नत में दाखिले की खुशखबरी दे दो, राइट। तो अबू बकर सिद्दीक अंदर आ गए, फिर थोड़ी देर के बाद खटखट हुई, तो फिर पूछा कौन, उमर। फरमाया कि हाँ, उसको भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दो, ठीक है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी अंदर आ गए, उसी तरीके से और कुछ साहब भी आए थे, लेकिन यहाँ पर इतनी ही हदीस है। अच्छा, एक दफा नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने ख्वाब देखा, तो उस ख्वाब में देखते हैं कि एक महल है, जन्नत का महल जो कि सोने का बना हुआ है, और वो बिल्कुल जैसे कि कोई दरिया है, वाटर बॉडी है, समंदर या दरिया, उसके बिल्कुल ना किनारे के ऊपर है। ये जो बीच हाउसेज होते हैं, ये जो बड़े अच्छे वाले बीच हाउसेज होते हैं, ये बड़ी लग्जरी किस्म की चीज समझी जाती है। तो बीच हाउस टाइप का एक बड़ा सा सोने का महल है, और उसकी कुछ सीढ़ियां हैं जो कि बाकायदा पानी के अंदर भी जा रही है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पे देखा कि कोई खातून जो है ना उन सीढ़ियों के ऊपर बैठी हुई उस पानी से वजू भी कर रही है, ठीक है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक फरिश्ता वहां पे नजर आया, उससे पूछा कि ये किसका महल है, तो आप सजम को बताया गया कि ये उमर रजी अल्लाह ताला उनका महल है, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो आप सजम ने उमर रजी अल्लाह उनको ये ख्वाब सुनाया कि मैंने तुम्हारा महल देखा था, सोने का बना हुआ था और ऐसा था और ये था, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस महल के अंदर दाखिल हो जाऊं, लेकिन फिर मुझे ना तुम्हारी गैरत याद आ गई, ठीक है, तुम्हारी गैरत याद आ गई, तो इस वजह से मैं तुम्हारे महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। उमर रतान जो थे ना ये बड़े गैरतमंद थे। किसी को कोई वाकया पता है जिससे कि उमर रतान की गैरत का बड़ा जबरदस्त तरीके से पता चलता है? एक मिनट, ऑनलाइन में की अजवाज, अच्छा, चले अफान भी बताने चाह रहे हैं।
उन्होंने मशवरा दिया था कि आप अपनी बीवियों से कहें कि वो अपने आप को कवर करके फिर उसके बाद उसी मामले में आया भेजेगा।
हाँ, उमर रजान की गैरत ऐसी थी कि पर्दे का हुक्म नहीं आया था ना, ठीक है, तो मुसलमान औरतें जो है वो चेहरा खोल करके जो है बाहर निकला करती थीं। चादर से अपने आप को ढपना, बालों को छुपाना, ये तो पहले भी था, क्योंकि बाल जो होते हैं औरत के, ये सतर होते हैं, बाल औरत के सतर होते हैं, और सतर को छुपाने का हुक्म ये पहले से था, ये कोई नई चीज नहीं थी। तो पूरा कवर अपने आप को तो पहले भी करती थी, चेहरा जो है वो खुला रहता था, क्योंकि हिजाब का हुक्म नहीं आया था, ठीक है। तो औरतें जिनके अंदर सहाबियात भी थी, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मा की अजवाज मुतहरात भी थी, वो बाहर निकला करती थी, मर्दों के साथ जो है वो इंटरेक्शन भी होता था, चेहरा भी जो है वो खुला होता था, उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, भाई ये जा रही हैं, ये आयशा जा रही हैं, ये सऊदा जा रही हैं, फलानी जा रही हैं, ठीक है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, दिल के अंदर एक है उनको बात, ये है ना, वो अच्छी नहीं लगती थी कि नबी अलैहिस्सलाम की अजवाज जो है वो इस तरह से निकला करें, और लोग, हालांकि पर्दे का हुक्म नहीं आया था, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नहीं, लेकिन पसंद नहीं था, तो वो कहते रहते थे नबी सल्लम आप अपनी औरतों को कहें कि वो ढक छुप करके जाए ना, वो फिर जरूरत की वजह से बाहर निकला करें, मर्दों से बातचीत ना करा करें। तो मैं कैसे किसी को मना कर सकूं, ये मेरी बीवियां तो हैं, लेकिन मेरी बीवी होने से पहले ये अल्लाह की बंदियां हैं, राइट, तो इनके ऊपर हुक्म जो है ना मेरा नहीं चलता। देखिए नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल इस तरीके से सोचते थे कि ये मेरी बीवियां जरूर हैं, मेरी उम्मती जरूर हैं, लेकिन ये मेरी बंदियां नहीं है, राइट, ये बंदियां अल्लाह ताला की हैं, तो इनके ऊपर ऐसा कोई हुक्म मैं अपनी तरफ से कैसे लगा सकता हूँ, ये तो अल्लाह का हुक्म होगा तो होगा ना, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उमर रतन की बात नहीं मानी, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर हिजाब की आयात नाजिल फरमा दी, राइट, और फिर जो है ना वो उम्मातुल मोमिनीन और सारी की सारी मोमिना औरतों के ऊपर जो है वो पर्दा फर्ज हो गया, ठीक है। यानी अब जो है ना वो आप बिला शरी जरूरत के मर्दों से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बाहर निकलेंगी जरूरत के तहत बाहर निकलेंगी, लेकिन अपने आप को कवर करके निकलेंगी, कवर तो पहले भी करती थी, अब किस चीज को कवर करेंगी, चेहरे को भी कवर करेंगी, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं होने देंगी, ठीक है। तो उमर रतान की जो गैरत ऐसी थी, नबी अलैहिस्सलाम को अंदाजा था, तो उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हारी गैरत की वजह से तुम्हारे घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, जन्नत के अंदर भी। तो उमर रतान जो है ना रोना शुरू हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे गैरत करूंगा है? कि आप तो मेरे घर में क्यों दाखिल हो गए, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, फिर एक दफा नबी अलैहिस्सलाम उहद पहाड़ के ऊपर खड़े हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे, और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। ऐसे ऐसे यानी वह तो छोटा सा पहाड़ है ना, ये ऐसे ऐसे जबाल जबाल पहाड़ उन एक छोटे पहाड़ के ऊपर खड़े हुए, वो बेचारा कांपना शुरू हो गया है, वह जो है ना वो हिलना जुलना शुरू हो गया ऐसे करके, ठीक है ना, उसके ऊपर अर्थ को एक टाइप की एक चीज कैफियत आ गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके ऊपर असा मारा, फरमाया वह क्यों हिलते हो, तुम्हारे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद खड़े हुए हैं, क्यों हिलते हो? वो हिलना बंद हो गया, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त गोया के उमर रतान और उस्मान रतान को उनकी शहादत की भी खुशखबरी दे दी कि आप जो है ना दोनों शहीद होंगे। अच्छा, फिर बहुत अहम बात बड़ी जबरदस्त उमर रतान के बारे में उन्होंने लिखी कि उमर रतान को नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि पिछली उम्मतों में भी मुहद्दस हुआ करते थे, मुहद्दस दाल के ऊपर जबर, ठीक है, मुहद्दस क्या होता है, एक तो लफ्ज होता है मुहद्दिस, मुहद्दिस उसको कहते हैं जो कि हदीसों को याद करता है, हदीसों का इल्म हासिल करता है और हदीसें बयान करता है ना, तो ऐसे उलमाए कराम को मुहद्दिसीन कहते हैं, मुहद्दिसीन। मुहद्दस क्या होता है, मुहद्दस वो होता है कि जिसके ऊपर अल्लाह ताला जो है ना वो बातें खोलते हैं, इल्हाम फरमाते हैं, इंट्यूशन के जरिए से ना उसको नई नई चीजों की समझ अता फरमाते हैं, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पिछली उम्मतों के अंदर भी मुहद्दस हुआ करते थे, ऐसे कुछ लोग होते थे जिनके ऊपर अल्लाह ताला इंट्यूशन फरमाते थे, मेरी उम्मत के मुहद्दस उमर है रजी अल्लाह ताला, ठीक है। एक और जगह पे आपसे फरमाया इन अल्लाह वदअ अल हक अला लिसान उमर, वदअ अल हक, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हक बात को, सच बात को उमर अदनान की जुबान के ऊपर रख देते हैं, यानी उमर अदनान जो है ना वो सच्ची बात कहते हैं, अल्लाह ताला उनके दिल में इल्का फरमाते हैं सच्ची बात को, ठीक है। यानी वही नहीं, वही तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आती है और अम्बिया के ऊपर वही आती है, उमर अदनान के ऊपर जो चीज आती थी ना वो वही नहीं कहलाएगी, वो इंट्यूशन कहलाएगी। हमारे ऊपर भी आती है, आपके ऊपर भी आती है, हर इंसान के ऊपर आती है, हत्ता के जानवरों के ऊपर भी आती है, शहद की मक्खी के ऊपर भी आती है। कुरान मजीद के अंदर भी उस वही का जिक्र है जो कि शहद की मक्खी, लेकिन वो वही इल्हाम। तो हम जो कुछ भी करते हैं ना वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए आइडिया की तरफ की वजह से ही करते हैं, हत्ता के वो, मैं हमेशा ये वाली मिसाल बयान करता आ रहा हूँ कि वो जो न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन दी ना वो भी अपनी तरफ से नहीं दे दी, वो भी अल्लाह की तरफ से उसके दिल के ऊपर इल्हाम आया तब उसने लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, खुद को थोड़ी अपनी तरफ से दे सकता है, ठीक है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खास बात क्या थी कि शरी अहकामात के बारे में, कुछ ऐसे मशवरों के बारे में बड़े स्पेशल किस्म की जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामात उनके ऊपर आते थे, तो ये उनको डिस्टिंग्विश करता था दूसरे लोगों से, ठीक है ना। वरना तो हमारे ऊपर भी इल्हामात आते हैं, सबके ऊपर ही आते हैं, लेकिन हमारे इल्हामात में और उन इल्हामात के अंदर बड़ा फर्क था। अच्छा, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो इल्हाम की बुनियाद पर बातें किया करते हैं, ये नबी रसूलुल्लाह ने फरमाया। फिर एक और मशहूर हदीस आपने सुनी होगी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लौ काना बादी नबीयुन, ठीक है, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर अब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, उस वजह से जाहिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो नबूवत नहीं मिली। तो इसके ऊपर हज़रत जी ने भी अपनी बयान के अंदर बयान फरमाई, ये बात फरमाई, और उन्होंने भी लिखा उसी बात को कि अब पूछते हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो उम्मत के अंदर नंबर आता है वो तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नंबर आता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनका नाम क्यों नहीं लिया और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम क्यों लिया, तो आपको पता है, बता दीजिए।
क्योंकि आप सुनते
क्योंकि बिल्कुल सही फरमाया है कि अबू बकर सिद्दीक रतान जो थे ना वो तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक हो चुके थे, ठीक है ना, तो इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं था, सही है। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम के बाद तो फिर उमर रतान का ही नंबर आता है, अबू बकर सिद्दीक रतान गोया के वो तो चिपके हुए थे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, तो बाद में तो फिर उमर ही आते हैं ना, इस वजह से आप ने उमर रतान का नाम लिया, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी मशहूर हदीस इनके बारे में वो भी सुन लें, आज बस हमने इसी तरह की बातें करनी है। तो एक और हदीस नबी ने फरमाई कि वल्लजी नफसी बियदिही, कि कसम है उस जात की कि जिसके हाथों में मेरी जान है, इस तरह से अल्लाह ताला की कसम भी नबी फरमाया करते थे, अल्लाह के हाथों में हम सब की जान है। मा लकी का शैतान पत्तू सारिकन फज्जन, के शैतान किसी रास्ते के ऊपर जो है ना वो यानी नहीं चलता, इला इल्ला सला का फज्जन गैरा फज्जिक, अच्छा मा लकी तू मा लकी का लकी का शैताना शैतानु, शैतान जब भी तेरे रास्ते में सामने आता है तो वो तेरे रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेता है, यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी अगर कहीं जा रहे हैं ना और अगर शैतान उस रास्ते के ऊपर आ जाता है तो शैतान रास्ता बदल लेता है, ठीक है ना, वो कहीं और चले जाता है, यानी शैतान भी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से डरता था, ठीक है। और एक हदीस में ये फरमाया जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, आखिरी बात आज की क्लास के अंदर कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने का वाकया, तो अब आप लोगों को अक्सर पता ही होगा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया क्या था इस्लाम आने का। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड ये थी कि एक दिन अबू जहल ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी बदतमीजी करी और नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ दी, ठीक है, तो वो तो फिर ये काम हरकत करके ना वो जा करके अपने दोस्तों में जा करके बैठ गया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो नबी अलैहिस्सलाम के चचा भी थे और दूसरे एक भाई भी थे और गहरे तरीन दोस्त भी थे, वो गए हुए थे शिकार के ऊपर, तो वो शिकार खेल करके जब वापस आ रहे थे ना तो उनको रास्ते में एक औरत मिली, वो कोई गुलाम थी, बांदी टाइप की कोई औरत थी, उसने ना हमजा दादान को बताया कि ये अबू जहन है ना तो बहुत बदतमीजी करी है आज आपके दोस्त के साथ, आपके साहिब के साथ बहुत बदतमीजी करी है। तो हमजा दादान को सुन करके इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो सीधा जो है ना वो अबू जहल के पास गए। तो वहां वो बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, शायद हरम के अंदर ही बैठा हुआ था। वहां पे जा करके ना उन्होंने आओ देखा ना ताओ, जो उनके हाथ में तलवार थी उसको उल्टा, जिस तरफ से वो जरा यानी वो होती है ब्लंट होती है, वहां से जो है ना उसको उसके सर के ऊपर मार, तुमने जो है मेरे भतीजे के साथ बदतमीजी करी है, उसको तकलीफ पहुंचाई है। तो
आपने जब ये वाक्य हो जाए तो आपने कमान कहा था, तीर कमान लगा
हाँ,
था।
उस वाली किताब में सीन कमाल लिखा था, इसके अंदर जो है वो उल्टी करके तलवार मारने का लिखा हुआ है। तो उसके सर से खून भी निकलना शुरू हो गया, उसके दोस्तों ने चाहा कि हमजा हसन को जो है ना वो जवाब दें, लेकिन वो भी जो था ना वो अबुल हिकम था, हिकमत का बाप माना जाता था ना, वो तो इस्लाम नहीं लाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि तुम अबू जहल हो, लेकिन बड़ा जहीन था और बड़ा हिकमत वाला था, बड़ा बर्दाश्त वाला था। तो उसने कहा कि नहीं, हमजा को नहीं छेड़ो, अगर हमजा को कुछ हो गया ना तो फिर ये जो पूरा खानदान है ना उसके साथ हमें जंग लड़नी पड़ेगी और फायदा नहीं होगा, खाम खा का हम अपने अंदर ही जो है ना वो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करके हमें फायदा नहीं होगा, तो छोड़ दो छोड़ दो जाने दो। ठीक है, तो वो अपने जख्म को पी करके जो है ना वो बैठ गया, बर्दाश्त कर लिया उसने इस बात को। तो फिर ऐसे काफिर भी जो है ना इस तरह की बहुत सारी कंसेशन जो है वो, जो कि हम दूसरी क्लास जो आजकल चल रही है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्जी के अल्फाज से ही, बड़ी कंसेशन देते रहते हैं मुसलमानों को। तो बहरहाल उन लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया, तो हमजा जो है ना उनको बड़ा शदीद गुस्सा था, बहरहाल उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया। फिर उसके बाद वो बड़े खुश हुए कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मैंने अपने भतीजे का बदला निकाल लिया। तो वो ना सीधा फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और नबी अलैहिस्सलाम को जाकर के उन्होंने ये वाकया बताया और कहा कि मैंने जो है ना आपका बदला निकाला, मैंने अबू जहल को मारा और उसका खून भी निकल आया। और ये नबी अलैहिस्सलाम खामोश, कोई जो है ना रिएक्शन नहीं, कोई खुशी का एहसास नहीं। तो हमजा तो परेशान हुए, आपको खुशी नहीं हुई कि मैंने ये क्या काम किया है? तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे तो उस वक्त खुशी होगी जब आप मुसलमान होंगे। ठीक है, तो हमजा तो ने ना उस वक्त कलमा पढ़ लिया, बाद में सोचा ना कि मैंने क्यों कलमा पढ़ लिया बाद में तो उनको इस्लाम जो है वो समझ में आ गया, दिल में उतर गया, पक्के मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त जो है ना उन्होंने इस वजह से कलमा पढ़ लिया। अब जो उनका कलमा पढ़ना था, तो ये एक बहुत बड़ा वाकया था कि कुरैश में हमजा तआला उनका बहुत ऊंचा मुकाम था, इंतहाई बहादुर तरीन इंसान थे और उनका बड़ा जो है वो टैका था पूरे कुरैश के अंदर। उनकी खबर जो है ना वो पूरे फैल गई ना जंगल की आग की तरह, हमजा भी मुसलमान हो गया, हमजा भी जो है उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। तो ये खबर जब उमर रतान को पहुंची ना, तो उमर रतान ने कहा यार बस टू मच, दिस इज टू मच, बहुत हो गया, ये कहते हैं ना बस हो गई बस मेरी। ठीक है, वो पहले जो है ना वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि हमारे लोग जो है उनके दरमियान आपस में जो है वो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई मुसलमान हो गया तो उसके जो खानदान वाले उसके दुश्मन हो गए, वो इनका दुश्मन हो गया, कोई इनको मार रहा है वो उनको मार रहा है, ये क्या हो गया कुरैश के अंदर ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो उनको पता हुआ था कुछ नहीं था इस्लाम की हकीकत का, तफसील का ये सब तो उनको ज्यादा नहीं पता था, थोड़ा बहुत तो एक्चुअली उनको पता चल रहा था, लेकिन उनको ये चीज बहुत बुरी लगती थी कि कुरैश आपस में इस तरह से लड़ना शुरू हो गए। तो अब जब हमजा रतान की उन्होंने खबर सुनी ना कि इतने बड़े बड़े लोग भी, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब तो ना आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ठीक है, तो वो फिर अपने तीर कमान नेजा सब कुछ लेकर के ना, तलवार के भी पता नहीं क्या मुझे करना पड़ेगा, बस मैं जाता हूं और इस मसले की जो नाऊज बिल्ला जड़ है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खत्म ही कर देता हूँ आज, किस्सा पाक फसकम जहां पाक। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल शहीद करने की नीयत से जो है वो अपने घर से निकले और वो जा रहे थे, तो एक सहाबी जो थे वो रास्ते से गुजरे, उनका नाम भी नहीं देख सका, तो उन्होंने उमर रतान को
नहीं
देखा कि भाई नईम रतान थे,
नहीं
नईम या नोम रतान थे, तो उन्होंने देखा कि उमर जो है ना ये अच्छा तलवार वलवार तो इनके पास होती थी सबके पास, लेकिन इस तरह से ना टक टप किस्म के टक टप सारे हथियारों को लेकर के कोई जाता था, इसका मतलब था कि ये जा रहा है किसी से लड़ने के लिए, किसी को मारने के लिए जा रहा है, ये नॉर्मल बात नहीं थी। तो उमर रतान को जब उन्होंने इस तरह से देखा, मैंने कहा ये किसी को ना कत्ल वतल कुछ पता नहीं क्या करने के लिए जा रहा है, तो मुझे उमर किधर जा रहे हो नहीं, उन्होंने कहा मैं ना यार आज, उनको भी पता नहीं था क्योंकि मुसलमान सारे ना उस वक्त अपने ईमान को छुपाते थे, किसी को पता नहीं होता था कि कौन मुसलमान हो गया कौन मुसलमान नहीं हुआ, तो उनको पता नहीं था कि नहीं रतान जो है मुसलमान हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ ना, ये जो मसला खड़ा हो गया ना इतना बड़ा नाउज़ बिल्ला हमारे यहाँ फितना खड़ा हो गया है, उसको ना खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ओहो ये तो बड़ा, उनके दिल में सोचा कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, उमर जाएगा तो पता नहीं कितना फसाद होगा, क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम को बचाने की मुझे फिक्र करनी चाहिए। तो उनको और तो कुछ समझ में आई नहीं, उन्होंने कहा मैं इनको ना डाइवर्ट कर देता हूँ किसी तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने डाइवर्ट करने की यानी बस रास्ता चेंज करने की और थोड़ा सा मोहलत हासिल करने की, मैं जल्दी से जाकर नबी अलैहिस्सलाम को खबर दे दूँ कि उमर आ रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि उमर पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी अपनी बहन और बहनों ही मुसलमान हो चुके, ठीक है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का तो पहले ही दिमाग जो है ना उस वक्त गुस्से में था, गुमा हुआ था, उन्होंने सुना अच्छा मेरे अपनी बहन जो है मुसलमान हो गई है, ओहो वो तो उधर ही जो है ना अपने बहन की घर की तरफ चले गए, और वहां पे जाकर के इससे पहले के वो दरवाजा खटखटाते आवाज देते, उनको अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई, अंदर जो है वो कुरान मजीद सीखा सिखाया जा रहा था, सही है। तो हजरत अब्बा खुबैब रज़ान जो है वो खबाब रज़ान, वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बिन खत्ताब जो उमर रज़ान की बहन थी, और उनके शौहर हजरत सईद रजी अल्लाह तआला अन बिन जैद, ये उनके शौहर थे, फातिमा रज़ाना बीवी थी और उमर रज़ान की बहन भी वही थी। तो इनको जो है ना वो कुरान मजीद पढ़ना सिखा रहे थे। सईद बिन जैद रतान ये भी अशरा मुबशरा सहाबा में से थे, ठीक है, सबसे आखिर में इनका नाम आता है अशरा मुबशरा में। तो उमर रतान ने फिर खटखटाया तो अंदर से पूछा कौन, उमर, अच्छा जी अंदर आ जाओ भाई है अंदर आ जाओ। तो उन्होंने कहा मुझे आवाजें आ रही थी, क्या कर रहे थे तुम लोग, और मैंने सुना है कि तुम लोग जो है वो मुसलमान हो गए, पहले तो उन्होंने कहा तुम लोग मैंने सुना मुसलमान हो गए जी।
अच्छा
हाँ खुबाब रतान जो थे, खबाब रतान जो है वो छुप गए ना फौरन से, इन्होंने भी उनको छुपा दिया कि भाई क्या करेगा वहाँ। तो कहा जी मैंने सुना है तुम मुसलमान हो गए, तो सईद रतान ने जवाब दिया कि अगर वही सच है तो क्या हर्ज है इसके, मुसलमान होने में क्या हर्ज है। उनको तो गुस्सा आया भी था, उन्होंने मारना शुरू कर दिया ना सईद रतान को। तो उनको बचाने के लिए हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो है वो सामने आ गई, तो उमर रतान ने जो मारा ना तो एक उनकी बहन को भी जा करके हाथ लगा, तो उनको भी खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन उन्होंने कहा उमर तुम मेरी मेरे जिस्म में से जान निकाल सकते हो लेकिन मेरे दिल में से ईमान नहीं निकाल सकते, कर लो जो भी करना, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, अगर तुम खत्ताब के बेटे हो तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ, ठीक है। तो अब ये बात जब उन्होंने सुनी ना तो थोड़ा सा एक बात है ना इंसान हिल जाता है एक बात सुन करके, तो उनके थोड़े से होश ठिकाने आए और उनका गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम जो पढ़ रहे थे ना वो तुम उसको छू नहीं सकते, हम तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम तो नजिस हो नापाक हो, तो पहले तुम जो है ना गुसल करो पाक हो फिर हम तुम्हें वो चीज़ दिखाएंगे। तो उमर रतान उन्होंने बाकायदा बात मानी, गुसल किया और फिर खबाब रतान जो है वो बाहर आ गए और बताया कि ये, अब वो क्या थी, वो सूरह ताहा की इब्तदाई आयत, ताहा मा अनजलना अलैकल कुरआना लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्ध वस्समावाति अल-उला अर-रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा व इन तजहर बिल क़ौली फ इन्नहु यअलमु अस-सिर्र व अख्फा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लहुल अस्माउ हुस्ना वहल अता का हदीफ मूसा, ठीक है। ये क्या आयात है, ये उमर अतान के जो है ना वो दिल को चीर करके आर पार हो गई। उमर अतान जो है उन्होंने इस्लाम लाने का फैसला कर लिया, खबाब अतान को पता चला तो कहने लगे उमर तुम्हें खुशखबरी हो, मैंने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को सुना था कि वो तुम्हारी हिदायत के लिए दुआ मांग रहे, ठीक है। तो उनकी दुआ जो है वो पूरी हो गई, तुमको अल्लाह तआला ने तौफीक अता फरमा दी। तो उनको लेकर के फिर ये सब के सब जो है ना दारे अरकम पहुंचे, दारे अरकम हजरत अरकम रतान का वो घर था छोटा सा कि जहाँ पे मुसलमान छुप छुप करके ना जमा होते थे और वहां पे नबी अलैहिस्सलाम से दीन सीखते थे, वहीं पे नमाजें वगैरह अगर पढ़ते थे। तो ये बड़ा एक छोटा सा हरम के करीब जो है वो घर था, तो नबी अलैहिस्सलाम वहीं पर थे और अंदर हजरत हमजा रतान भी मौजूद थे। तो उमर रतान जब गए और खटखटाया तो किसी ने दरवाजे की कोई सुराख वगैरह से देखा तो उमर, और उमर जो है ना वो तलवार लेकर के आए हुए। तो हमजा रतान ने फरमाया कोई बात नहीं आने दो उसको, अगर तो वो अच्छी नीयत से आया होगा तो अच्छी बात है खैर है, लेकिन अगर बुरी नीयत से आएगा ना मैं उसी की तलवार लेकर के उसका सर कलम कर दूंगा, ठीक है आने दो उसको। उमर चांद अंदर तशरीफ लाए, अब तो बदले बदले सरकार नजर आते हैं, तो उमर चांद तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुके थे, बदल चुके थे। तो नबी रसूल के करीब आए, आप ने उमर चांद को यहाँ से ना, जैसे यहाँ पे जैसे बेल्ट वेल्ट होता है दुपट्टा कोई ऐसी चीज, तो यहाँ से ना पकड़ा और कहा, उमर तुम कब कलमा पढ़ोगे, कब मुसलमान हो? ठीक है, तो मैं फरमाए मैं आपके पास मुसलमान होने की नीयत से ही आया हूँ, और अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब वहां पे मौजूद मुसलमानों ने देखा सुना कि उमर अतान मुसलमान हो गए, सब ने जो नारे तकबीर बुलंद किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक लोगों को आई। ठीक है, सब मुसलमान बहुत खुश हुए। और उसके बाद जब नमाज का वक्त होने वाला था तो उमर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें क्या डरने की जरूरत है? उस वक्त मुसलमान जो है वो छुप करके अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ते थे, कोई हरम जा करके काबतुल्ला के सामने नमाज नहीं पढ़ सकता था। उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्ला चल के नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी बात मान ली। जी तहज्जुद
तो नहीं
की नमाज का वक्त आपने पढ़ा है कहीं? नहीं, मुझे मुझे नहीं मालूम, किसी को पता है तो बता दें। उस वक्त जो है ना वो वैसे भी 5 नमाजें फर्ज नहीं हुई, तो सुबह की एक नमाज होती थी, रात की एक नमाज होती थी, यानी फजर और ईशा, जैसे कि बनी इसराइल के ऊपर फजर और ईशा, फजर और मगरिब, एक्चुअली मगरिब के वक्त के ऊपर एक नमाज होती थी फजर के, और तहज्जुद की नमाज जो है वो तो हो चुकी थी उस वक्त, होती ही थी। नहीं, सिर्फ तहज्जुद फर्ज होने की तो नहीं है, तहज्जुद फर्ज होती थी, इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस है, लेकिन सिर्फ तहज्जुद फर्ज होने का नहीं था, दो नमाज होती थी। ठीक है, बहरहाल जो भी नमाज थी, लेकिन ऐसी नमाज कम अज कम थी कि जिसमें वहां पर लोग मौजूद थे, क्योंकि जब ये लोग वहां पहुंचे ना, पहुंचे कैसे, दो लाइनें बना करके, एक लाइन के आगे जो है हजरत हमजा तान थे और एक लाइन के आगे जो है हजरत उमर तान थे, और नबी अलैहिस्सलाम भी वहीं पे साथ साथ चल रहे थे, तो इन दो लाइनों के फॉर्म में ये दो लोग वहां पे पहुंचे हैं, और वहां पे जाकर के उमर तान ने बाकायदा ऐलान फरमाया है कि अगर तुम में से कोई अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है या अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है तो आ जाए मुझसे लड़ने के लिए, वरना डोंट इवन थिंक अबाउट इट। ठीक है, वरना दूर ही रहो तुम। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आकर के इन लोगों से लड़ाई कर सके। हमजा भी थे और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम भी थे, इन लोगों ने फिर पहली दफा जो है वो हरम के अंदर नमाज पढ़ी, अलल ऐलान नमाज पढ़ी। तो उसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फारूक का लकब भी दिया। फारूक, फारूक कहते हैं फर्क करने वाले को, अल फर्क बैन अल हक वल बातिल, बिल्कुल क्लियर, हक ये है और बातिल ये है, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के इनका सबसे ज्यादा मशहूर लकब है, जैसे सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु का है, उसी तरह फारूक आजम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का लकब है। ठीक है, इतना आज के लिए काफी है, किसी को कोई सवाल अगर रह गया हो पूछना तो अभी पूछ सकते हैं। जी
मैं इससे ज्यादा बार करूँ है कि जो औरत होती है उसके बाल उसके सर पर होते हैं, तो बाज औरतें तो जो महरम होते हैं उनके सामने तो सदर नहीं खोल सकते, तो जैसा बाप हो गया, भाई हो गया, बेटा हो गया, तो अगर औरतें उनके सामने बात बोले तो ये ठीक है या गलत है? तो
आपको किसने कहा कि औरत महरम के सामने सतर नहीं खोल सकती?
अगर के अलावा तो किसी के सामने
नहीं, सतर की भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, बाल जो है वो वैसा सतर नहीं है जो कि महरम के सामने ना खोला जा सके, बाल खोल सकते हैं महरम के सामने। और कोई? जी
जनरेशन तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम लीजिए।
मेरे तो जहन में नहीं है, लेकिन आज आप लोगों ने पढ़ी है तो किसी को याद, किसी ने लिखा है 9th जनरेशन तक तो वो बता सकते हैं। खिलाफ बंदे
हमारा
वो, इनका लिखा होगा, आसान मिल जाएगा इंशाल्लाह, आसानी के साथ देख लेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बिल्कुल, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, इसको बंद कर दें जी।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट।